भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय। देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका श्री कृष्ण बलराम मंदिर इस्कान वृंदावन में शाम के श्रीमद् भगवद गीता के सत्संग में हार्दिक स्वागत है। हम भगवत वाणी श्रीमद् भगवद गीता के दसम अध्याय ऐश्वर्य या विभूति योग उसके अंतर्गत आज हम तीसरे श्लोक का पाठ करेंगे। ये जो पहले सात श्लोक हैं इसका भाव है कि भगवान जो जिसको जानना पूर्ण रूप से असंभव नहीं है, संभव नहीं है। बड़े बड़े देवता और ऋषि भी जिसको नहीं जानते हैं, उस भगवान को जानकर उनका शरण लेना चाहिए। पहले सात श्लोकों में जिसको जानना मुश्किल है उसको जानकर उसका शरण लेना चाहिए, ये पहले सात श्लोकों का भाव है। और तीसरे श्लोक में भगवान जिसका आज हम पाठ कर रहे हैं उसमें कहते हैं, यो माम अजम अनादिम च वेति लोक महेश्वरम असमूढ़ सम्मर्त्येषु सर्व पापै परम उच्यते। तो आइए इसका पाठ करते हैं। यो माम अजम अनादिम च वेति लोक महेश्वरम असमूढ़ सामर्थ्येष सर्व पापै परमुच्यते। यो माम अजम अनादिम च वेति लोक महेश्वरम असमूढ़ सामर्थ्येष। वेते लोक महेश्वरम असमूढ़ सर्व पापै परमुच्यते यो मनमनाजिम च वेति लोकमहेश्वरम् असम्मूढसमर्त्येषो सर्व पापै परमुच्यते। सो इस श्लोक में पहला शब्द है यो, यो मतलब जो भी कोई भी। माम भगवान श्री कृष्ण अपनी छाती के ऊपर उंगली रख के अर्जुन को कहते हैं माम मतलब मुझको, श्री कृष्ण को। अजम अजन्मा, जो जन्म नहीं लेता। अनादिम, जो सबके आदि में है, जब कोई नहीं था तब भी था, जब कोई नहीं रहेगा तब भी रहेगा। अनादि, जिसकी जिसका आरंभ नहीं है उसको अनादि कहते हैं। और च का अर्थ है जन्म लेता हूं फिर भी अजन्मा हूं। वेति का मतलब जानता है, वेति वेद मतलब जानता है, जो इस बात को जानता है। क्या और जानता है? लोक महेश्वरम, मैं सब लोकों का महान ईश्वर हूं, नयनता हूं। तो दो बातें जो जानता है, मैं अजन्मा हूं, अनादि हूं, और सब लोकों का स्वामी हूं। तो उसको लाभ क्या होगा? सब मर्त्येषु सर्व पापै परम उच्यते, वो इस मृत्यु लोक में सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। असमूढ़, इसका मतलब वो ब्रह्म में नहीं पड़ेगा, भटकेगा नहीं। मूढ़ हा? और असमूढ़, अंग्रेजी में इसको लिखा है बिवेल्डरमेंट, विदाउट बिवेल्डरमेंट, इसका मतलब ब्रह्म में नहीं पड़ेगा, मोह में नहीं पड़ेगा, भटकेगा नहीं, पापों से मुक्त हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? असल में मेरी भक्ति में लग जाएगा। इसका अर्थ लिखा नहीं है, चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, क्योंकि पाप जो होते हैं वो मेरी भक्ति में बाधा डालते हैं। अब पाप ही नहीं रहेगा तो फिर मेरी भक्ति के सारे रुकावटें बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और मेरा भक्त बन जाएगा। ये क्यों लिखा है? क्योंकि ये जो हो 7 से लेके 12 अध्याय हैं, ये भक्ति योग के अध्याय हैं। और इन 12 अध्यायों में भी 9 और 10 अध्याय जो है वो गुह्यतम ज्ञान के अध्याय हैं। 9 और 10 अध्याय दोनों गुह्यतम ज्ञान है। और 10वें अध्याय में तो चतुर्श्लोक की भगवद गीता भी है, जो सारी गीता का सार है। तो जो भगवान को अजन्मा, जन्म लेते हुए भी अजन्मा, और अनादि और सर्व लोकों का, सब लोकों का महान ईश्वर मानेगा, नियंता मानेगा, वो कभी भी भ्रम में नहीं पड़ेगा और मृत्यु लोक में सब पापों से मुक्त होके बिना रुकावट के भगवान की भक्ति में लग जाएगा। इस बात को प्रमाणित करने के लिए कि पाप मुक्त होने के बाद ही भक्ति शुरू होती है, तो 7वें अध्याय का एक श्लोक याद आना चाहिए। है किसी को याद? अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद मोह मुनुर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता। ये श्लोक है ना, इस श्लोक का अर्थ क्या है, जो पापों से जब मुक्त हो जाते हैं तो दृढ़ व्रत से मेरी भक्ति करते हैं। इसका मतलब पाप भक्ति में बाधा है, तो पापों से मुक्त होने का इससे आसान और कौन सा तरीका होगा कि ये सिर्फ मान लें और जान लें कि भगवान अजन्मा है, भगवान अनादि है, भगवान सब लोगों के महेश्वर है। बस इतना जानने से सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कितना आसान सा सीधा रास्ता है, परंतु बहुत मुश्किल है। और ये जो अजम शब्द है और इस जो जवेती शब्द है, इन दोनों शब्दों को समझने के लिए चौथे अध्याय का भी श्लोक स्मृति में आना चाहिए। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता, वेति वहां भी शब्द है, मेरे दिव्य और जन्म और कर्म की जो दिव्यता को जानता है वो जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होके मेरे पास आ जाता है। तो वेति शब्द भी चौथे अध्याय में है और पापों से मुक्त होने वाला ही भक्ति करने में समर्थ होता है। ये दो बातें मुख्य इसमें हमको समझनी चाहिए। फिर जो तात्पर्य इसमें है, पहले श्रील प्रभुपाद वही भगवान की भक्ति करने का अधिकारी होता है। और कौन सा श्लोक प्रमाण के लिए बताया था अभी, सातवें अध्याय का कौन सा श्लोक था, ये शाम अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता। पाप नाश होते हैं तो दृढ़ व्रत धारण करके भक्ति करता है। और वेति के लिए कौन सा श्लोक बताया था, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता, ये भी जन्म है यहां। अब श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य का आरंभ है, जैसा कि सातवें अध्याय के तीसरे श्लोक में कहा गया है। तीसरा श्लोक सातवें अध्याय का क्या है, मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित माम यतति सिद्धय यततां पि सिद्धानां कश्चित माम वेति तत्वता। अब उसमें भी वेति शब्द है, तो प्रभुपाद ने इसका जो वेति शब्द है इस श्लोक में, उस वेति शब्द की परिभाषा के लिए सातवें अध्याय का तीसरा श्लोक दिया। और इस श्लोक में का भाव क्या है, हजारों में से कोई एक होता है जो आत्म साक्षात्कार करने के रास्ते पे चलता है, और ये है ज्ञानी। ज्ञानी आत्म तत्व को जानना चाहते हैं, और ऐसे हजारों ज्ञानी जिन्होंने आत्म साक्षात्कार किया है, कोई एक विरले मुझको तत्व से जानता है। इसका मतलब जो वो जो आत्म साक्षात्कार किया है करने वाले हजारों में से कोई एक भगवान को तत्व से जानता है। तो ये श्लोक वेती शब्द की परिभाषा में प्रभुपाद जी ने लिखा है। तो यह लिखा आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं होता, किंतु जो वास्तव में अपनी जिसकी स्थिति संसार से ऊपर है, परम का मतलब ऊपर, जो संसार की अलौकिक दिव्य परम का तीन और अर्थ लगाएंगे परम के साथ, अलौकिक दिव्य परम कृष्ण की जो स्थिति को समझ लेता है, उसी दशा में मतलब उस स्थिति में जब वो होगा तब वो सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। अब ये स्थिति कौन सी है जो कृष्ण को ऐसे जान लेता है, और कृष्ण को ऐसे कैसे हम जान लेंगे? अब ये प्रश्न थोड़ा समझना चाहिए कि जीवन में इस ये हम कैसे समझ सकते हैं। यहां लिखा है प्रभुपाद जी, इन दैट स्टेज ओनली व्हेन वन हैज फुली अंडरस्टूड कृष्णा सुप्रीम पोजिशन Can one be free completely from all sinful reactions? सारे पापों से मुक्त होगा। अब पूर्ण रूप से कृष्ण की स्थिति को कैसे जाने और उस स्तर पे कैसे आए? पढ़ तो लिया, हम क्या करें कि उस स्तर पे आए? तब हमको ये विचार करना पड़ेगा कि भगवान श्री कृष्ण प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं, और उसको वास्तव में जानना है तो हमको भी प्रकृति के तीनों गुणों से परे ऊपर जाना पड़ेगा। और भगवान को जानने के लिए, कृष्ण को जानने के लिए प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर जाने का साधन है एकमात्र भक्ति। ज्ञान सतोगुण की वृत्ति है, ज्ञान सतोगुण से ऊपर नहीं ले जाता, इसलिए भगवान को पूर्ण जानने में ज्ञान पर्याप्त नहीं है, इसलिए तीनों गुणों से ऊपर जाना पड़ेगा। और ऊपर जाने के लिए रास्ता एकमात्र है भक्ति। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यास तत्वतः अविचारेण भक्ति योगेन सगुणान समतयते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। केवल भक्ति से तीनों गुणों से ऊपर जाया जा सकता है। तो भक्ति एकमात्र साधन है जिससे भगवान को, कृष्ण की परम स्थिति को जानकर परम स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो वास्तव में परम स्थिति क्या है, वो स्थिति क्या है? हमारे साधन में वो परम स्थिति है भगवान की प्रेम भक्ति को जगाना, प्रेम भक्ति को जगाना। अब जो हम भक्ति कर रहे हैं ये साधन भक्ति है, और साधन भक्ति का लक्ष्य है भाव भक्ति को जगाना, और भाव भक्ति जब परिपक्व होती है तो प्रेम भक्ति के रूप में प्रकट होती है, तब कृष्ण को वास्तव में हम जान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, उसके उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। तो इसका अर्थ है कि पूर्ण रूप से कृष्ण की परम स्थिति को जानने के लिए प्रेम भक्ति के स्तर पे आना चाहिए। दो बातें समझे, परम स्थिति में कृष्ण की परम स्थिति को जानने के लिए प्रेम भक्ति को प्रकट करना है, लेकिन पाप जो है वो तो साधन भक्ति में ही समाप्त हो जाते हैं। साधन भक्ति जो हम करते हैं उसके दो गुण हैं, पहला है क्लेश घनी, दूसरा है शुभदा। वो तो शुरू में ही सारे पापों को नाश कर देती है। तो आश्चर्यजनक बात है, पाप नाश करने के लिए भक्ति आरंभ ही करनी है, उसको हम कैसे समझे? आप देख लीजिए, जिन्होंने थोड़ा भी कृष्ण भावना के संग में आकर भक्ति के रास्ते में चलना शुरू किया है तो कितने पाप, चार पाप कर्मों को तो छोड़ दिया ना भाई। चार पाप कर्म जो पाप के चार मुख्य कारण है, नशा करना, जुआ करना, व्यभिचार करना, और क्या, हाँ, पशु हत्या करना, तो ये है चार बड़े पाप। ये पाप तो भक्ति के शुरुआत में ही छूट जाते हैं, तो भक्ति के शुरुआत में ही छूट जाते हैं, इससे ये तो साधन में ही छूट जाते हैं, पहले स्तर पे ही छूट जाते हैं। परंतु कृष्ण की परम स्थिति को जानने के लिए ये तो पाप चले गए, लेकिन रह क्या गया? रह गए अपराध। अपराध भक्ति के साधन करते समय भी साथ रहते हैं, और अपराधों में भी नाम अपराध, वो तो भाव भक्ति तक भी उनका थोड़ा लेस रह जाता है। इसलिए इस परम पापी परम उच्चते के दोनों अर्थ लेने चाहिए, कि साधन भक्ति के स्तर पे हमारे जो कर्मों के कारण पाप हैं वो तो समाप्त हो जाएंगे, प्रारब्ध कर्म समाप्त, अप्रारब्ध कर्म समाप्त, कूट बीज सब समाप्त हो जाएंगे, परंतु अपराध तो रह जाएंगे। अपराधों से मुक्त होने के लिए प्रेम भक्ति को प्रकट करना पड़ेगा, तब कृष्ण की परम स्थिति को समझ पाएंगे। देखो, हम सब भक्ति कर रहे हैं, 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से, कोई 30 साल से, क्या कृष्ण को, परम तत्व को समझ लिया है क्या? हाँ, अनुभव कर लिया है कि नहीं कर लिया? क्यों? कर तो रहे हैं, फिर क्यों नहीं? अरे भाई, रोज भगवान को देखते हैं, राजा श्याम सुंदर को देखते हैं, कृष्ण बलराम को देखते हैं, रोज दर्शन करते हैं। यही भगवान है, ऐसा विश्वास आया क्या? हाँ, यही राधा कृष्ण है, ये साक्षात भगवान है, ऐसा विश्वास आया क्या? नहीं। और ये केवल उत्तम अधिकारी के स्तर पे आता है कि वो इसी विग्रह को साक्षात श्री कृष्ण, राधा कृष्ण समझता है, और हम इसको भगवान का विग्रह समझते हैं, ऐसे जो भी समझते हैं, लेकिन परम कृष्ण के तत्व को नहीं समझते कि यही भगवान है। तो ये स्तर बहुत ऊपर का है। प्रभुपाद ने एक बार अपने वरिष्ठ शिष्यों से पूछा था कि आप सबको विश्वास हो गया कि कृष्ण ही परम भगवान है, तो सब सर थोड़ा नीचे हो गया, कोई भी नहीं कहा कि हम समझ गए या हमें ये पूर्ण विश्वास हो गया। क्यों? क्योंकि अभी तक भाव भक्ति का उदय हुआ नहीं, प्रेम भक्ति प्रकट हुई नहीं। और ये भक्तियां प्रकट होती है जब संवित शक्ति जो भगवान की है, संवित का अर्थ है भगवान की जानकारी कराने वाली, कृष्ण की पहचान कराने वाली शक्ति संवित। और हलादिनी कृष्ण के आनंद की अनुभूति कराने वाली, ये दो शक्तियां जब तक हमारे हृदय में प्रकट नहीं होंगी तब तक कृष्ण के वास्तविक परम स्वरूप को जानना संभव नहीं है। ये दो भगवान श्री कृष्ण की शक्तियां हैं, संवित और हलादिनी, और तीसरी है सैंदनी। वो सत्य का परिचय कराती है सैंदनी, चित्त का संवित और आनंद का हलादिनी। और भक्ति जो है भगवान की स्वरूप शक्ति है, ये चित्त शक्ति का ही विलास है, ये आएगी कहां से? ये आएगी किसी भगवान के शुद्ध भक्त के हृदय से, या स्वयं भगवान कृपा करके दें, या भगवान का कोई प्रिय भक्त कृपा करे, जिसका हम याचना करें, प्रार्थना करें, कृपा करो हमारे ऊपर कृष्ण को, परम तत्व को समझने के लिए हमको समर्थ बनाओ, उसके हृदय से दया करके वो दे दे तो हमारा काम होगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा वास्तव में कृष्ण को समझना है उसके लिए एक ही चीज अनिवार्य है संसार में, भक्त का संग। भक्तों का महत्व सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, भक्त की कृपा से ये संभव है। तो इसलिए कृष्ण के इस स्थिति को जानने के लिए हम इस जन्म में प्रयास करके प्रेम भक्ति के स्तर पे पहुंचना पड़ेगा। ये जो स्तर शब्द लिखा है ना, एट द स्टेज, स्टेज का मतलब है साधन भक्ति से ऊपर उठ के भाव भक्ति और प्रेम भक्ति के स्तर पे जब पहुंचेंगे तभी कृष्ण के तत्व को समझ सकेंगे। ये हम जो भक्ति कर रहे हैं ये साधन भक्ति कर रहे हैं, इस भक्ति का परिणाम ये होना चाहिए भाव भक्ति जागृत होनी चाहिए, लेकिन हुई नहीं। और भाव भक्ति जाग जाएगी तो उसके भी कुछ लक्षण हैं, अष्ट सात्विक भाव हैं और भी आठ लक्षण हैं, उससे पता लगता है कि भाव भक्ति जागृत हुई कि नहीं हुई। अब दूसरा परिच्छेद पढ़ते हैं। तो ये प्रभुपाद ने वेती शब्द की परिभाषा इस श्लोक में, जो वेती शब्द है उसको समझाने के लिए सातवें शब्द के वेती शब्द को लेकर और कृष्ण के तत्व को समझना और पापों से परम मुक्त होने के लिए, पूर्ण मुक्त होने के लिए बचा। अब आगे लिखते हैं, यहां पर भगवान को अज अर्थात अजन्मा का तो जीवात्मा भी अजा है, फिर भगवान में और जीवात्मा में अंतर क्या है? जीव आत्मा सर्वलोक महेश्वर तो नहीं है, अनादि भी नहीं है। तो दो चीजें और विशेषण इसलिए दिया कि जीव भी तो अजन्मा है, परंतु भगवान अजन्मा और जीव अजन्मा दोनों में अंतर है। तो भगवान अजन्मा है इसकी परिभाषा के लिए, जीव अजन्मा है उससे अलग करने के लिए क्या बताया है? भगवान जीवों से भिन्न है क्योंकि जीव भौतिक आसक्तिवश जन्म लेते हैं। भूत बालकम चतुर्भुजम शंख चक्र आयुध अस्तम। उन्होंने चार हाथ से क्रीट कुंडल धारण किए हुए शंख चक्र गदा पदम लिए हुए अद्भुत बालक को देखा था। ये तो भागवत में लिखा है ना, तो वो आए थे तब भी अपने रूप में आए थे, अपने ही रूप में आए थे। इसी को प्रभुपाद आगे लिखेंगे कि वो बाद में उनकी प्रार्थना करने के ऊपर बालक का रूप धारण कर लिया, वो भी तो उनका नित्य वास्तविक दिव्य स्वरूप है। तब ये तीन सिद्धांत हमेशा के लिए याद रखने चाहिए। पहला सिद्धांत, शरीर का जन्म मृत्यु होता है। दूसरा सिद्धांत, आत्मा का कर्मों के कारण आना जाना होता है। तीसरा सिद्धांत, भगवान अहितु की कृपा करके अवतार लेते हैं। तो ये तीन सिद्धांत है। तो यहां जीवों के लिए लिखा है, इसलिए चौथे अध्याय में कहा गया है प्रभुपाद के चौथे अध्याय अजोपी सन नव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपी सन। ये जो श्लोक है, अजोपी सन नव्यात्मा, मैं अजन्मा हूं, मेरा शरीर यहां अव्य आत्मा का मतलब अविनाशी है मेरा शरीर, ये कभी नाश नहीं होता है। यहां आत्मा का अर्थ है मेरा शरीर। अजोपी सन नव्यात्मा भूतानाम ईश्वरो, यहां जो अनादि, यहां जो सब लोक महेश्वर है ना, यहां लोकों का स्वामी है, वहां सारे जीवों का स्वामी है। अजोपी सन नव्यात्मा भूतानाम ईश्वरो, सारे जीवों का मैं स्वामी हूं। और फिर क्या है, अजोपी सन नव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपी सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, मैं अपनी योग माया के द्वारा, यहां प्रकृति का अर्थ है योग माया, और दूसरा इसका अर्थ है मेरा स्वभाव। प्रतिंगम स्वाम अधिष्ठाय संभवामी युगे युगे। और एक अर्थ, अर्थ शब्द है आत्म मायया, आत्म मतलब मेरी, मायया का मतलब मेरी अपनी योग माया, और एक अर्थ माया का है करुणा। मैं करुणा करके, कृपा करके, मेरी अंतरंग शक्ति के, अंतरंग शक्ति में स्थित होकर प्रकट होता हूं। बाहरंग शक्ति, अरे भाई हमारे को शरीर कौन देता है, बाहरंग शक्ति देती है ना भैया। शरीर किससे मिला, प्रकृति से मिला ना। तो भगवान का शरीर प्रकृति नहीं बनाती, भगवान का शरीर सच्चित आनंद कहते हैं ना, सच्चित आनंद है ना भगवान, सच भगवान का सारा विग्रह ही सच्चित आनंद है। और ये सच्चित आनंद, ये तो भगवान की अंतरंग शक्ति के तीन, भगवान की अंतरंग शक्ति के ये तीन विभाग है, सत्य चित्त आनंद। और बाहरंग शक्ति के भी तीन विभाग है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। बाहरंग शक्ति के भी तीन विभाग हैं, अंतरंग शक्ति के भी तीन विभाग हैं। तो भगवान अंतरंग शक्ति के से के कुल के अंदर स्थित होकर आते हैं, और हम बाहरंग शक्ति के अंदर स्थित होकर आते हैं, क्योंकि हमारा शरीर बाहरंग शक्ति बनाती है और भगवान का शरीर अंतरंग शक्ति का बना हुआ है। सच्चित आनंद, हमारी आत्मा सच्चित आनंद है, लेकिन भगवान पूरे का पूरा सच्चित आनंद है। उनके शरीर और आत्मा में भेद नहीं है, वो दोनों एक ही है। इसको वो दिवाली के दिन मिठाइयां बहुत घर में बनी थी, बच्चे सुबह झगड़ा कर रहे थे मां से, मैं हाथी खाऊंगा, मैं ट्रैक्टर खाऊंगा, मैं मोटर खाऊंगा। तो बाहर से एक बाबा जा रहा था, दरवाजा खटखटाया। माता ने कहा अभी तो भोग लगा नहीं है महाराज, भिक्षा तो नहीं देंगे। बोला भिक्षा नहीं चाहिए, तुम्हारे ये बच्चे कौन से है जो ना सुबह सुबह उठ के ट्रैक्टर खा रहा है, कोई ट्रैक्टर कोई हाथी खा रहा है, ये कैसे बच्चे हैं? अरे बोला महाराज ये मिठाई है, ये टॉफी ट्रैक्टर की शक्ल की है और ये टॉफी हाथी की शक्ल की है, इसका मतलब पूरे का पूरा मिठाई है देखने में, चाहे वो शरीर हाथी का हो या ट्रैक्टर का हो, लेकिन है तो मिठाई चीनी का बना हुआ है, उसके अंदर कोई हार्ड मांस नहीं है। ऐसे भगवान पूरे का पूरा सच्चित आनंद है, उसमें कोई और हार्ड मांस नहीं है। तो ये जो बात है ये चौथे अध्याय में लिखी हुई है। फिर प्रभुपाद लिखते हैं इस श्लोक के वेती लोक मैं अजन्मा हूं और अनादि हूं और सर्व लोकों का महेश्वर हूं। तो बोला ऐसे ऐसे तो ब्रह्मा जी को भी कहते हैं कि वो अजन्मा है और कोई मात्र जन्म तो लिया नहीं है। बोला अजन्मा है लेकिन सर्वलोक महेश्वर तो नहीं है ना, सब लोगों का स्वामी तो नहीं है ना, एक लोक में एक ब्रह्मा है। ऐसे जितने लोक है उतने ब्रह्मा है, तो वो भी तो महेश्वर नहीं है ना। तो प्रभुपाद जी यहां लिख रहे हैं कि भगवान जो है वो सभी लोगों के परम स्वामी हैं। ये सृष्टि के पूर्व थे अनादि, वो दूसरी बात है कि बहुत समय रह सकते हैं, उनकी आयु ज्यादा है परंतु है तो भौतिक शरीर उनका। तो उन देवताओं से भगवान भिन्न है और उनको उत्पन्न भी तो भगवान करते हैं। ये तो पहला श्लोक है ना, नमे विदुषुर गुणा न महर्षि न, नमे विदुषर गुणा, कोई मुझे देवता नहीं जानते हैं, न महर्षि, महर्षि भी नहीं जानते। क्यों? अहम आदि देवा नाम महर्षि नाम च सर्वस्व, इन देवताओं और महर्षियों का मैं उत्पन्न करने वाला हूं। इसको कैसे समझेंगे भाई? जिसको मैंने पैदा किया वो मुझे कैसे जानता है? हम उदाहरण बहुत सरल देते हैं, शादी होती है ना तो आजकल फोटो निकालते हैं, फोटो का एल्बम बनाते हैं, शादी का एल्बम होता है ना। अब शादी के 7-8 साल के बाद एल्बम को घर में देख रहे थे तो बेटा, तब तक बेटा हो गया था 8 साल का, वो एल्बम में कहता है मेरा फोटो क्यों नहीं है इसमें? अरे तो सब कहे तेरा फोटो कहां से आएगा, तो पैदा ही नहीं हुआ था तुम्हारा, तुम्हारी तो इसके शादी के बाद तुम्हारा जन्म हुआ है। तो ये देवता सब जो हैं वो, उनका जन्म ही नहीं हुआ था तो वो कैसे जानेंगे भगवान को? तो उनका फोटो कैसे आएगा भगवान के साथ? नहीं आ सकता, जब जन्म ही नहीं हुआ था तो कहां से आएगा? तो ये जो इसका अर्थ है कि वो देवता कैसे जानेंगे बेचारा, वो तो उत्पन्न ही भाई ब्रह्मा जी का ये मस्तक से रुद्र प्रकट हो गया, और ब्रह्मा जी भगवान के नाभि से हुए, तो भगवान तो इनसे पहले थे ना, तो वो कैसे जानेंगे भगवान को? नहीं जान सकते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण परम पुरुष है। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, अतएव कृष्ण हो जाएगा, ये तो नेम है सृष्टि का। 6 परिवर्तन आते हैं शरीर में और 3 प्रवर्तन हम, अब ये थोड़ा सा ऐसे समझे, देखो ये टेबल भी जड़ है, इसमें 3 चीजें होती हैं, एक दिन बनाई गई, कुछ साल रहेगी, फिर टूटेगी फूटेगी खत्म हो जाएगी। 3 चीजें, पैदा होना, कुछ समय रहना और समाप्त होना। और ऐसे ये शरीर जड़ था, शरीर जड़ है पर इसमें आत्मा है, इसलिए इसमें 6 परिवर्तन आते हैं, 3 नहीं आते हैं 6 आते हैं। इसका मतलब आत्मा वाला शरीर जड़ में 6 परिवर्तन आते हैं, जन्म होता है, बढ़ता है, अपने जैसे और पैदा करता है, कुछ समय रहता है और फिर बूढ़ा होता है और फिर समाप्त हो जाता है। तो एनसोल्ड बॉडी में 6 चेंजेस होती हैं और सामान्य भौतिक प्रकृति में 3। तो जो प्रकृति, जो कुछ भी सृष्टि हुई है वो कृष्ण से अलग है, इसका मतलब कृष्ण की सृष्टि नहीं होती, वो नित्य है, शाश्वत है। जो ये जानता है वो पापों से मुक्त हो जाता है। समय हो गया 2री क्लास का। शब्द है पुण्य। तो पुण्य कर्म कौन सा है? श्रोणताम स्व कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्ण। पुण्य है हरि कथा सुनना, भगवान की भक्ति करना, भगवान की सेवा करना, यही पुण्य है। इसका अर्थ है, ये सब लिखने के पीछे एक ही बात है, वो कह के हम कथा को विराम देते हैं। वो बात ये है, ये जो श्लोक है, भगवान श्री कृष्ण इंद्रियों से नहीं जाने जा सकते। श्री नाम आदि, श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्रहाय इंद्रिय, फिर सेवानो मुख्य ही जीवादो स्वयं स्पर्धे अध। जब हम जीवा से भगवान का नाम लेंगे, हरि कथा करेंगे, तो भगवान अपने आप प्रकट होंगे। हमारे प्रयास से हम उनको नहीं जान सकते हैं, एकमात्र भक्ति से जान सकते हैं, और वो भक्ति भगवान के नाम लेने से शुरू होती है। हरे कृष्ण, धन्यवाद।